चलिए बढ़ते हैं आगे हम। मैंने आपको चार सोपानों के बारे में बताया, हिल्दा सभा के पाठ्यक्रम में जो सोपान उन्होंने बताए हैं। इन सोपानों का मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताऊं कि जो पहला सोपान है, इसमें पाठ्यक्रम का मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाता है। जो भी हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं अकॉर्डिंग टू हिल्दा सभा, उन्हें हम शिक्षा के उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि उद्देश्य जो है वो सबसे पहले परिवर्तन के लिए सबसे पहले आवश्यक है। शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करना जिससे ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सृजनात्मकता और प्रत्यक्षीकरण को महत्व दिया जाता है। इन सभी के संबंध में प्रमाणों को एकत्रित करके हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। दूसरा नंबर जो द्वितीय सोपान है, इसमें समुचित शिक्षण विधियाँ, जो भी शिक्षण विधियाँ आप यूज करते हैं बच्चे को पढ़ाने में, आपको पता है कि बड़ी विधि को शिक्षण विधि और उसमें जो अप्लाई की गई छोटी विधि है उसको प्रविधि कहते हैं। तो शिक्षण विधियों, प्रविधियों एवं शिक्षा शास्त्री शिक्षा सामग्री को प्रयुक्त करके अधिगम के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं। अधिगम अनुभवों हेतु जो भी प्रमाण होते हैं उन प्रमाणों को भी हम एकत्रित करते हैं। तीसरा जो सोपान है, तीसरे सोपान में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए प्रमाण एकत्रित करते हैं, जैसे पुनर्बलन, अभिप्रेरणा और भी जो कुछ आप मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चे को इम्प्रेस करने के लिए, अधिगम कार्य कराने के लिए जिन फैक्टर्स को आप अप्लाई करते हैं अपनी टीचिंग में, इसके अतिरिक्त अभ्यास भी अधिगम को प्रभावित करता है, आपको पता है। फिर दृश्य शब्द सामग्री से में बालक अधिक रुचि लेते हैं और उस माध्यम से कराया गया कार्य अत्यधिक स्थायी होता है, इसमें छात्रों को रटना नहीं पड़ता है। चतुर्थ सोपान पे आते हैं हम। चतुर्थ सोपान में पाठ्यक्रम की सार्थकता एवं उपादेयता उद्देश्यों की दृष्टि से ही की जाती है। परीक्षण का स्वरूप जो है वो उद्देश्य केंद्रित होता है, इसलिए व्यवहार परिवर्तन के रूप में प्रमाणों का संकलन किया जाता है। इन प्रमाणों के आधार पर पाठ्यक्रम का सुधार एवं विकास किया जाता है। अर्थात हम देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, तो जो सीखा है उसको वहीं पे रोक के, जो नहीं सीख पाया है उस चीज उसमें हम नई चीज को जोड़ करके बच्चे को व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए फिर कोशिश करते हैं, फिर कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो चीजें हैं अगर बच्चे ने नहीं सीखा है, किस कारण से नहीं सीखा है, उन कारकों को, उन घटकों को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हिल्दा तबा के पाठ्यक्रम में इन जो सोपान दिए गए हैं उन सोपानों के अतिरिक्त पाठ्यक्रम के प्रारूप के लिए चार अवस्थाओं का भी उल्लेख किया गया है। यद्यपि अवस्थाएं एवं सोपानों में अधिक समीपता है, जो अवस्थाएं हैं और उनके साथ जो स्टेप्स हैं सोपान हैं उनमें काफ़ी सिमिलरिटी है। तो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से ही बताया है कि हिल्दा तबा के पाठ्यक्रम प्रारूप में जो चार अवस्थाएं हैं, सबसे पहली अवस्था आपकी है मूल्यांकन हेतु प्रदत्तों के स्वरूप का निर्धारण करना। दूसरी है आवश्यक यंत्रों एवं प्रक्रिया का चयन करना या स्वरूप विकसित करना कि बच्चा क्या क्या सीख रहा है उसका एक आपके सामने चित्र बन जाए, स्वरूप बन जाए। तीसरी बात कह रहे हैं कि परिवर्तन के संबंधों में प्रदत्तों का विश्लेषण एवं अर्थापन करना तथा विकास हेतु परिकल्पना का प्रतिपादन करना। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर है परिकल्पना को कार्य रूप में बदलना। अर्थात जितनी आपकी हाइपोथीसिस है, जो भी परिकल्पना है उसको जब हम देखते हैं कि ये इसका आउटपुट मिल रहा है, किसी भी चीज़ का आउटपुट मिलता है तभी आप उसको काम अच्छे से और आगे बढ़ाते हैं। तो उस तरीके से कि जो परिकल्पना है वो कार्य रूप में परिणत हो गई और आपने उसको जान लिया अच्छे से, बच्चे को समझा दिया ये सारी चीज़ें। फिर जो प्रथम अवस्था के अंतर्गत उद्देश्य बताए गए हैं, शिक्षण विधियाँ बताई गई हैं, प्रविधियाँ बताई गई हैं, इनसे संबंधित मूल्यांकन हेतु प्रदत्तों के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। द्वितीय अवस्था में बताया गया है आपको कि जो आवश्यक उपकरण हैं एवं प्रक्रिया है इसका चयन किया जाता है, इनके मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया, चाहे वो मौखिक हो, लिखित हो या प्रयोगात्मक हो, इनका निर्धारण करके बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। तीसरी स्थिति जो है, इस स्थिति में उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर निदान करके उनके सुधार हेतु तो परिकल्पना का प्रतिपादन किया जाता है। परिकल्पना के स्वरूप से यह भी स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम में किस प्रकार का परिवर्तन करने की संभावना है, अर्थात जो आप बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, उस परिवर्तन के बिंदु क्या थे, किन किन बिंदुओं पे परिवर्तन किया जाए। ये चीज परिकल्पना की पुष्टि के बाद यह निश्चित हो जाता है कि क्या परिवर्तन अपेक्षित है। परिकल्पना की पुष्टि ये भी बताती है कि प्रतिमान की जो अंतिम अवस्था है वो कौन सी अवस्था है। अनुभव एवं परिकल्पना की दृष्टि से सुधार हेतु तो कुछ दिशा मिल जाती है और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन द्वारा सुधार किया जाता है। हिल्दा ताबा ने अपने इस प्रतिमान में अवस्थाओं अथवा सोपानों का अनुसरण क्रमशः किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि साइको बेसिस होने की वजह से आपको ये बात जल्दी समझ में आ रही होगी। यह प्रतिमान क्योंकि बहुत व्यावहारिक है और प्रमाणों के आधार पर इसमें सुधार किया जाता है। साथ ही और भी जो चीज़ें हैं प्रचलित हैं, जो भी निश्चित चीज़ें हैं, जो सरल चीज़ें हैं, उनको हिल्दा तबा ने अपने प्रतिमान में लिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सब्जेक्ट ज्ञान भाषा एंड पाठ्यचर्या। इसको आप पूरी तरह से पढ़ें, दोबारा सुने और सुरक्षित रहें, सेफ रहें, घर से ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें। धन्यवाद।